श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पत्रस की दूसरी पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है पवित्रता, सत्य ज्ञान और पुनरागमन। हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
चलो जय 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 जयकार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ पास उसके तुम करो आराधना। चलो जय 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 जयकार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ पास उसके तुम करो आराधना।
हम गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हम गाए हालेलुया हालेलुया,
हम गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हम गाए
जयकार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा।
सामने आओ पास उसके तुम करो आराधना।
प्यार हमें वो कृपा वो करता हमेशा, वो है मेरा सहारा, वो ही है मेरी आशा। परमेश्वर यहोवा हम उसके बच्चे हैं, वो है मेरा पिता।
परमेश्वर यहोवा हम उसके बच्चे हैं, वो है मेरा पिता।
यहोवा भला है, उसकी करुणा हमेशा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहती है। हम उसकी प्रजा हैं और वो हमारा राजा है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और अपने प्रियों के साथ आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दूसरे पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम सब देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन बाइबल, जिसके द्वारा से वह हमसे बातें करता है, हमें सुधारता, हमें सिखाता है। तो आज जब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, तो आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, आप हमें सिखाते और समझाते हैं। पिताजी, आज जब हम आपके वचन से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके हृदयों को छेदने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनकी जरूरतों को पूरा करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार हैं, निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं। प्रभु, आप उन्हें शांति दे, उन्हें चंगाई और छुटकारा दे, उद्धार का आनंद दे, ताकि प्रत्येक जीवन आप में धन्य होने पाए। हमारे अध्ययन पर आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब देख रहे हैं कि पत्रस, जिसने रूपांतरण के पर्वत पर प्रभु यीशु की महिमा देखी थी, कहता है कि प्रभु यीशु के रूपांतरण से भविष्यद्वक्ताओं का वचन दृढ़ ठहरा है। यह वचन हमारे लिए एक दिया है जो भोर के तारे अर्थात प्रभु यीशु के आगमन तक हमें ज्योति में रखता है। परंतु हमारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि भविष्यद्वाणी भविष्यद्वक्ता की इच्छा अर्थात उसकी कल्पना नहीं है, न ही उसके कहने के अनुसार पूरी होती है। भविष्यद्वक्ता पवित्र आत्मा से भर जाने पर परमेश्वर का वचन घोषित करते थे। भविष्यद्वाणियों की पूर्ति सिद्ध करती है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, और इस प्रकार से हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन आज भी कार्य करता है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए दूसरा पत्रस की पत्री उसके दो अध्याय से अध्ययन को आरंभ करेंगे। इसका विषय है झूठे शिक्षकों द्वारा धर्म भ्रष्ट करना। झूठे शिक्षकों द्वारा धर्म भ्रष्ट करना। पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि प्रभु यीशु से प्राप्त प्रकाशन मनुष्य को संसार से अलग करके परमेश्वर के निकट लाता है। अब हम उस बल की ओर ध्यान देंगे जो मनुष्य को संसार की ओर खींचता है। जिस समय की चर्चा पत्रस करता है वह समय आज का हमारा युग है। आइए पढ़ें दूसरा पत्रस दो अध्याय उसका एक पद। दो अध्याय उसके एक पद में लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। यहां पर लिखा है जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे अर्थात इसराइल में। पत्रस कहता है कि जिस प्रकार इसराइल में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार विश्वासियों में भी झूठे शिक्षक होंगे। पुराने नियम के युग में झूठे भविष्यद्वक्ता थे और आज कलीसिया में झूठे शिक्षक हैं। मेरे मित्रों, हमारी समस्या यह नहीं है कि हम झूठे भविष्यद्वक्ताओं की चिंता करें। आज तो जो भी मनुष्य भविष्यद्वाणी करेगा वह झूठा ही सिद्ध होगा, इसमें कोई शक नहीं है। किसी ने द्वितीय महायुद्ध के समय भविष्यद्वाणी की थी कि सितंबर 15 1943 में संसार का अंत होगा। उस दिन समाचार पत्र के संवाददाताओं ने वहां भीड़ लगा दी तो उसे सबके सामने स्वीकार करना पड़ा कि उससे अनुमान लगाने में चूक हो गई है। 15 सितंबर 1943 की अपेक्षा वह तिथि 15 सितंबर 1944 है। वहां के पादरी लोग चिंतित, हो गए और प्रार्थना सभाएं करने लगे, जैसा कि आज भी लोग करते हैं। उसी में से एक विश्वासी जो प्रभु का जन था, उसने उनसे कहा, चिंता मत करो। 15 सितंबर 1944 को भी यह व्यक्ति झूठा ही सिद्ध होगा। और ऐसा ही हुआ। समाचार पत्रों ने उसका खूब ठट्ठा किया। ऐसी मूर्खता के कारण प्रभु यीशु के कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वह व्यक्ति वहां से चला गया और कोई नहीं जानता कि वह कहां गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें झूठे भविष्यद्वक्ताओं की नहीं, झूठे शिक्षकों की अधिक चिंता करना है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरी शिक्षाओं की भी परमेश्वर के वचन से तुलना करें। मुझे एक शिक्षक ने बताया कि जब कोई उसकी शिक्षा पर आपत्ति उठाता है तो वह मेरी शिक्षा का संदर्भ देता है। मेरे मित्रों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन पर आधारित होना है। मुझे अचंभा होता है कि हम कितनी आसानी से मनुष्यों की शिक्षा से बहक जाते हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप कुछ धार्मिक पंथों के विशाल मुख्यालयों को देखें। मनुष्य पत्रस की चेतावनी पर ध्यान दिए बिना इन लोगों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम मूर्ख बन रहे हैं। पत्रस कहता है, झूठे शिक्षकों से सावधान। मेरे प्रियो, अध्याय 1 के अध्ययन में हमने देखा था कि पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता 100% सही भविष्यवाणी करते थे, परंतु पत्रस कहता है कि उस समय भी झूठे भविष्यद्वक्ता थे, जिसका एक उदाहरण है पहला राजाओं के पुस्तक अध्याय 22 में। आहाब और यहोशापात जब युद्ध में जाने के लिए परमेश्वर की इच्छा की खोज कर रहे थे, उस समय आहाब के भविष्यद्वक्ता झूठी भविष्यवाणी कर रहे थे, परंतु यहोशापात को उन पर विश्वास नहीं हुआ, अतः उसने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता की खोज की। आहाब राजा ने कहा, यहां पर एक भविष्यद्वक्ता तो है, परंतु मैंने उसे बंदी गृह में रखा हुआ है, क्योंकि वह मेरे लिए कभी भी भला वचन नहीं कहता है। आज कलीसिया को शुद्ध वचन सुनाने वाला प्रचारक पसंद नहीं है। जो प्रचारक मीठी मीठी बातें करते हैं, उनका मन बहलाते हैं, वही उनका अच्छा प्रचारक है। यही कारण था कि आहाब मिकायाह को पसंद नहीं करता था। मिकायाह जो एक भविष्यद्वक्ता है, आहाब को सत्य वचन सुनाता था। जब मिकायाह को लाया गया, तब उसने आहाब से स्पष्ट कहा कि वह युद्ध में मारा जाएगा। आहाब ने यहोशापात से कहा, देखा, यह व्यक्ति मेरे लिए कभी शुभ की बातें नहीं सुनाता है। दुर्भाग्य की बात है कि आहाब ने मिकायाह के वचनों पर ध्यान नहीं दिया और वह युद्ध में मारा गया। मिकायाह परमेश्वर का सच्चा भविष्यद्वक्ता था, परंतु उस युग में अनेक झूठे भविष्यद्वक्ता भी मौजूद थे। यहां पर लिखा है, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। डॉक्टर मार्विन आर विंसेंट कहते हैं कि झूठे शिक्षक शब्द केवल नए नियम में आया है। हम पहले कह चुके हैं कि झूठे शिक्षक कलीसिया के लिए संकट हैं। मेरा विश्वास कीजिए कि वे खतरनाक हैं। झूठा शिक्षक कौन है? झूठा शिक्षक वह है जो सत्य को जानते हुए भी किसी बुरे उद्देश्य से झूठ कहता है। वह या तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, या श्रोताओं को प्रसन्न करने के लिए, या पैसे के लिए झूठी शिक्षा देता है। आज ऐसे अनेक शिक्षक हैं जो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए सत्य को झूठा बनाते हैं। मेरे प्रियो, कुछ लोग अज्ञानवश झूठी शिक्षा देते हैं। प्राचीन काल के धर्म सुधारक और प्रेरितों की कलीसिया के बाद के पितरों ने जो शिक्षा दी, उसे आज हम नहीं मानते हैं। हमारा मानना है कि कुछ विषयों में वे सर्वथा गलत थे। वे झूठे शिक्षक नहीं थे, उनकी अपनी समझ में वे सत्य वचन की शिक्षा दे रहे थे। ये लोग झूठे शिक्षकों के वर्ग में नहीं है। झूठा शिक्षक वह है जो जानबूझकर गलत शिक्षा देता है। तब हम आगे पढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। पत्रस धर्म भ्रष्ट होने को भावी घटना इसलिए कहता है कि वह इस संसार से कूच करने वाला था। यहूदा भी झूठे शिक्षकों के प्रवेश की चर्चा करता है। यहूदा और दूसरा पत्रस की पत्री की समानता के कारण कुछ लोगों का विचार है कि उन्होंने एक दूसरे की नकल की है। मैं इस बात को एक भिन्न परिप्रेक्ष्य में कहता हूं। परमेश्वर जब किसी बात को महत्व देता है तो वह दो बार कहता है। यीशु मसीह कहते थे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु के लिए तो एक ही बार सच कहता हूं कहना बहुत था, काफी था। परंतु यीशु कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो इसका अर्थ है कि सब कुछ छोड़कर ध्यान से सुनो। अतः यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम इस पर ध्यान दें। यहूदा के समय तो झूठे शिक्षक कलीसिया में प्रवेश कर चुके थे और आज तक कलीसिया में पाए जाते हैं। मेरे विचार में यहां झूठे शिक्षकों की अति उत्तम व्याख्या दी गई है, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। पाखंड का अर्थ है विनाशकारी झूठी शिक्षाएं। इन झूठे शिक्षकों की पहचान थी कि वे अपने लिए किए गए प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य का इनकार करते थे। कलीसिया में वे आम सदस्य के समान थे। वे विश्वासी होने का दावा करते थे, परंतु गुप्त रूप से वे अपना काम करते थे। वे पाखंडी थे। वर्षों पूर्व मैंने एक बड़ी अच्छी रूढ़िवादी कलीसिया में प्रचार किया। उन्हें एक पादरी की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने मुझे वहां पर सेवा के लिए बुलाया और उस पादरी से उन्होंने पूछा कि वह क्या धर्मशास्त्र में विश्वास करता है और मानता है कि वह परमेश्वर प्रेरित वचन है। उसने उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हां में दिया। लगभग 2 वर्ष बाद जब मैं भी उस शहर में फिर से गया तो मुझे पता चला कि वह कलीसिया टूट गई है और वहां के सदस्य अन्य कलीसियाओं के साथ आराधना कर रहे हैं। कुछ मृदुभाषी सदस्यों ने मुझसे कहा वह अपनी व्याख्या में सर्वथा चूक कर रहा था। कुछ ने कहा उसने हमसे झूठ बोला था, उसने ठीक ऐसा ही किया था। जी हां, वह पाखंडी था। वह विश्वास कुछ और करता था और प्रचार कुछ और करता था। झूठे शिक्षकों की बातों में कुछ सच भी होता है। मैंने एक भी ऐसा पंथ नहीं देखा जिसमें कुछ न कुछ सत्य न हो। इसी कारण वे बहुत ही अधिक हानिकारक हो जाते हैं। पूर्ण रूपेण चूक करने से भी 10,000 गुना अधिक। वे कुछ बातों को सत्य स्वीकार करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 15 पद में प्रभु यीशु कहता है, झूठे भविष्यद् वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 29 पद में पौलुस इफिसुस की कलीसिया को सतर्क करता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। भेड़ की खाल में ये भेड़िए झुंड को पूरी तरह फाड़ खाएंगे और उन्हें तीतर बीतर कर देंगे। अपने परित्याग, क्रूसीकरण और पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने हमें यह स्पष्ट समझा दिया था। उस समय वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करना नहीं चाहता था। उसने कहा था कि स्वर्ग का राज्य एक बीज बोने वाले के समान है, राई के पौधों के समान, खमीर के समान है। आज खमीर परमेश्वर के वचन रोटी में आ गया है। परमेश्वर के वचन के आवरण में बहुत झूठ सुनाया जा रहा है, जो कि हमारे लिए दुखद बात है। दूसरा पत्रस के पत्र 2 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। यहां पर हम पढ़ते हैं, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, इन झूठे शिक्षकों के झूठे अनुयायी होंगे, और मैं यह नहीं मानूंगा कि परमेश्वर के चुने हुए सदा का धोखा खाएंगे। मेरे विचार में परमेश्वर इन झूठे शिक्षकों को अनुमति देता है जिससे कि कलीसिया में झूठों को बाहर किया जाए, पाखंडी पाखंड के ही पीछे जाएंगे। पहला क्रंथियों की पत्री 11 अध्याय के 19 पद में पौलुस यही कहता है, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खड़े हैं वे प्रकट हो जाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर की सच्ची संतान झूठी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करेगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 27 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जी हाँ, जब आप झूठे शिक्षकों के अनुयायियों को देखते हैं तब या तो वे अनजाने में धोखा खाते हैं या वे जानबूझकर धोखा खाते हैं, क्योंकि वे भी ऐसा ही विश्वास रखते हैं और बस यही सुनना चाहते हैं। दूसरा पत्रस 2 अध्याय के 3 पद में आगे लिखा है, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊंघता नहीं। लिखा है गढ़कर, अर्थात सांचे में ढालकर, जैसे मोम या मिट्टी को ढालते हैं। हमारा आज का प्लास्टिक शब्द इसी यूनानी शब्द से आया है। प्लास्टिक को आप जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं, कटोरा, बाल्टी, प्लेट, खिलौना आदि। आज प्लास्टिक के प्रचारक भी हैं जिन्हें उनके गुरु लोग जैसा चाहें वैसा ढाल लेते हैं। उनके श्रोता भी उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार ढाल लेते हैं। यही कारण है कि नया विश्वास लोगों के पथ भ्रष्ट कर रहा है। मेरे साथ का एक प्रभु का दास आज संसार में प्रसिद्ध है। वह मुक्ति विचारक वादी है। उसकी कलीसिया का एक सदस्य मेरी बाइबल अध्ययन कक्षा में आती थी। उसने कहा, उसका विश्वास दृढ़ है क्योंकि वह आपकी ही भाषा काम में लेता है। मैंने उससे कहा, परंतु क्या उसके कहने का अर्थ वही है जो मेरे कहने का अर्थ होता है? उसके विचार में ऐसा ही था। ईस्टर के दिन उसने मुझे फोन करके कहा, आपने इस पादरी की आलोचना की थी, परंतु उसने तो आज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का ही प्रचार किया है। मैंने उससे पूछा, क्या आपने उससे पूछा कि यीशु क्या सादेह कब्र में से जी उठा था? उसने कहा, मेरे विचार में तो उसके कहने का अर्थ यही था। मैंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि वह इसे नहीं मानता है, अतः उससे पूछना। अगले दिन उसने रोते हुए मुझे फोन किया और कहा, आप जानते हैं उसने प्रभु यीशु के सहदेह पुनरुत्थान का ठट्टा किया। मैंने उससे कहा, ये लोग हमारे शब्दों को काम में लेते हैं परंतु उनके पास हमारा शब्दकोश नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वे कहते तो हैं परंतु मुख्य बात यह है कि जो वे कहते हैं उसका अर्थ स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, पत्रस कहता है कि वे गढ़े हुए शब्दों का उपयोग करेंगे, वे श्रोताओं की इच्छा अनुसार शब्द काम में लेंगे, वे एक जन समूह से एक बात कहेंगे और दूसरे से दूसरी बात। मैं एक प्रचारक को जानता हूं जो रूढ़िवादी श्रोताओं में रूढ़िवादी शब्दावली का काम में लेता है और मुक्त विचारक श्रोताओं में उनके अनुरूप शब्दावली काम में लेता है। वह प्लास्टिक प्रचारक है। आप जैसे परिस्थिति में हो उसे रखेंगे, वह वैसा ही ढल जाएगा। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको ऐसे शिक्षकों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप कैसे सावधान रह सकते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे तब आप उसका सामना कर सकते हैं और सच्चाई को जान सकते हैं कि यह व्यक्ति हमें गलत शिक्षा दे रहा है, अन्यथा आप नहीं बच पाएंगे। मेरे प्रियो, आज के समय में भी हम सबको झूठे शिक्षकों से बचने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, पत्रस हमें यही सिखाता है ताकि हम बचे रहें। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
यीशु मेरे दिल में हर संगीत सुहाना, तेरी कृपा हो मुझ पर, गाऊं मैं तेरा तराना। यीशु मेरा सुर है, ताल है मेरा, वो है जीवन मेरा। यीशु मेरा सुर है, ताल है मेरा, वो है जीवन मेरा। जल्दी ही आएगा यहोवा, सामने आओ पास उसके तुम करो आराधना। चलो जय 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 जयकार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा, सामने आओ पास उसके तुम करो आराधना।